चंद्रिका जीव कांड लेक्चर नंबर 15। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्दवरनेमि चन्दमकलङ्कम्, गुणरयण भूषणुदयम् जीवस्य परुवणम् उच्चम्। आचार्य कल्प पंडित डोरवलमल जी द्वारा लिखित ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड भाषा टीका है, उसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ पढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 81 पर आ गए हम। 81 कल हमने चौथे गुणस्थान में जो बात चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए चलमल और अगाध दोष क्या होते हैं उसकी बात हमने देखी थी, और उसके बाद अभी यहाँ पर 30 नंबर की गाथा में देश संयत गुणस्थान का दो गाथाओं के द्वारा स्वरूप यहाँ बताएंगे। महत्व की दो गाथा एक थी कल 27 और 28, उसमें ऐसा बताया था कि मंदमति गुरु के कारण किसी पदार्थ के बारे में गलत श्रद्धान हो, फिर भी ये जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है ऐसा मानकर जिसने आज्ञा सम्यक तो प्राप्त किया है, ऐसे जीव के यानी सम्यक दृष्टि तो हो सकता है, परंतु यदि कोई अन्य आचार्य उसको आगम दिखाकर बताते कि ये तेरी बात गलत है, ये सही नहीं है, फिर भी अगर वो हट से वही बात मानना चालू रखता है तो तात्कालिक मिथ्या दृष्टि हो जाता है। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के विरुद्ध भी मान रहा है, पहले उसको ऐसा लगता था ये जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा ऐसी है। ये दो गाथा कल हमने देखी। अब देश संयत गुणस्थान की बात यहाँ चलेगी। 30 नंबर की गाथा। पच्चखानुदयादो संयम भावो न हो दिनवरिन्तु सोवदो हो दितदो देशवदो होदि पञ्चमो। प्रत्याख्यानोदयात् संयमभावो न भवति नवरिं तु स्तोकव्रतं भवति ततो देशव्रतो भवति पञ्चमः। प्रत्याख्यान के उदय से संयम भाव नहीं होता है, नवर्य ने फिर भी परंतु, स्तोक स्तोक का अर्थ होता है अल्प, अल्प व्रत होते हैं, इसलिए इसी को देश व्रत, देश यानी एक देश यानी थोड़े। टीका। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण रूप 8 कषायों के, पहले तो क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी के और अप्रत्याख्यानावरण के भी क्रोध मान माया लोभ, इस तरह से 8 हो गए। तो 8 कषायों के उपशम से प्रत्याख्यानावरण कषायों के देशघाती स्पर्धकों का उदय होते हुए, प्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है फिर भी वो भी मंद है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाव रूप लक्षण है जिसका, ऐसे क्षय से यानी यहाँ सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है, देशघाती स्पर्धकों का उदय है, तो यहाँ तो देश संयम चल रहा है कि जिसके सकल संयम रूप भाव नहीं होते, क्योंकि वो प्रत्याख्यानावरण है उसका उदय सकल संयम नहीं होने देता। ये तो निमित्त की भाषा में है, कोई कर्म किसी जीव को कुछ आड़ा नहीं आता है, परंतु विशेष यह है कि देश संयम अर्थात किंचित विरति होती है। पहले तो पूरा ही अविरत था चौथे गुणस्थान वाला, हाँ उसके प्राणी संयम भी नहीं है और इंद्रिय संयम भी नहीं है, ऐसे ही उसकी अवस्था थी। अब ये जो पांचवें गुणस्थान वाला है उसके किंचित विरति होती है, उसको धारण करता हुआ देश संयत नामक पंचम गुणस्थान वर्ती जीव जानना। ये बात ख्याल में आई? इसमें बिल्कुल सरल है, उसमें कोई बात, क्योंकि हमने ये कषायों के नाम और कितने चौकड़ी का कहां उदय का अभाव होता है ये बात देखी थी। उदय का अभाव, अभी यहाँ अभाव होता ऐसा नहीं कहा, उपशम होता है, उदय का अभाव है तो इन दो कषाय चौकड़ी का, आठ कषायों का, दो कषाय चौकड़ी कहो या आठ कषाय कहो, उनका क्या, कौन सी पोजीशन है उनकी, क्या उपशम है, ये कौन सा उपशम होगा? हाँ, यहाँ सदवस्था रूप उपशम चले, हमने उसकी चर्चा की ना? क्यों दिव्या बेन, अभी उसका डर नहीं लगता ना प्रशस्त प्रशस्त का? हाँ, पूछना, कोई भी बातें पूछने से मत डरना, क्योंकि बाकी लोग दोबारा सुनेंगे, हमारा भी पक्का हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं समझना कि मुझे ये बात नहीं समझ में आई और उनके सामने मैं कैसे पूछूं। अब 31 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। जो तस्वहाउ विरदो अविरदो तह यथावर वहादो, एक समयम ही जीवो विरदा विरदो जिने कमई, यस्रसतात विरतः अविरतः तथा च स्थावर वधात, एक समय जीवो विरता विरतो जिनै कमति। देखो ये संस्कृत देख, यह यानी जो, त्रस वधात विरतः, त्रस वध से तो विरत हुआ है, यानी त्रस वध का तो त्यागी हुआ है, अविरतः तथा च स्थावर वधात, परंतु स्थावर वध से तो अविरत ही है, उससे विरत नहीं हुआ है। एक ही समय में जीव विरत भी है और अविरत भी है। ये तो जिनेन्द्र भगवान के मत में ये बात बताते हैं। जिनेय कमति का अर्थ जिनेन्द्र भगवान में ही उसकी इच्छा रुचि, नहीं वो सम्यक दृष्टि है, ये बात यहाँ बताते हैं। विरता विरत है और सम्यक दृष्टि है, यानी अकेले बाह्य में त्याग करने की बात नहीं है, सम्यक्त्व सहित विरता विरत है, इसको पांचवा गुणस्थान कहा है। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। वह देश संयत ही विरता विरत भी कहलाता है, इसको संयता संयत भी कहेंगे। एक काल ही में जो जीव त्रस हिंसा से विरत है और स्थावर हिंसा से अविरत है, उससे वो उसकी हिंसा नहीं टल सकती, उससे वह जीव विरत और वही अविरत, इस तरह विरत अविरत में विरोध है तथापि अपने अपने गोचर भाव त्रस स्थावर के भेद की अपेक्षा से कोई विरोध नहीं है। विरोध कैसे, जो विरत है वही अविरत कैसे हो सकता है, परंतु विरत में अपेक्षा त्रस वध की है और अविरत में स्थावर वध की है, स्थावर वध से अविरत, त्रस वध से विरत, इसीलिए विरत अविरत ऐसा उपदेश योग्य है। पुनश्च वैसे चकार शब्द से, च लिखा है ना ऊपर गाथा में, च का अर्थ होता है और यानी अन्य भी जो कोई बात होती है उसको और से समझाते हैं। चकार शब्द से प्रयोजन के बिना स्थावर हिंसा को भी नहीं करता, यानी स्थावर हिंसा टलती नहीं है, परंतु जानबूझकर ये स्थावर हिंसा में प्रयुक्त हो ऐसा भी नहीं है, ऐसा व्याख्यान करना योग्य है। सो कैसा है जिनै कमति, अर्थात जो जिन जो आपतादिक, पहले तो हमने देखा था जिन तो चौथे गुणस्थान से ही जिन कहा था, परंतु यहाँ आप्त को मुख्य लेना, आप्तादिक, उन्हीं में है एकमात्र मति, आप्त है, आगम है और पदार्थ है, गुरु है, तो उन्हीं में एकमात्र मति अर्थात इच्छा रुचि जिसकी, ऐसा है। ये कहने का क्या कारण था तो उसको बताते हैं। इससे देश संयत के सम्यक दृष्टिपना है ऐसा विशेषण निरूपण किया है, यानी ये एकमात्र बाह्य व्रतों की बात नहीं है, तो यहाँ तो ये जीव सम्यक दृष्टि है, तो आप तो आगम और पदार्थों में उसकी श्रद्धा है, रुचि है, प्रतीति है, ये बात बताना चाहते हैं। यह विशेषण आदि दीपक के समान है। सो आदि में रखा हुआ दीपक जैसे आगे के सर्व पदार्थों को प्रकाशित करता है, वैसे यहां से आगे भी। देखो अविरत सम्यक दृष्टि में तो सम्यक दृष्टि शब्द था ही था, सम्यक दृष्टि शब्द था, अविरत शब्द अंत्य दीपक था, वो तो जीव सम्यक दृष्टि है ही, परंतु देश विरत वगैरह आगे के भी जिनैक मति ही है, ये बताना चाहते हैं। यानी सारे ऊपर के भी सभी सम्यक दृष्टि ही है, आगे भी सर्वगुण स्थानों में इस विशेषण द्वारा संबंध करना योग्य है। सर्व सम्यक दृष्टि जानने, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि बाह्य में तो महाव्रत धारण कर दिए है और गुणस्थान पहला हो, तो उसको हम ये छठे सातवें गुणस्थान वृत्ति नहीं कहेंगे। महाव्रत धारण करने पर भी सम्यक दृष्टि वे होने ही चाहिए। इसलिए जो जिनई कमति शब्द लगाया है, यहां से आगे भी जानना। चौथे वाले को तो बता ही दिया था, सम्यक दृष्टि नाम उसके गुणस्थान के नाम में अंतर्भूत है। ये तो पांचवे की बात हो गई। यहां पर आगे प्रमत्त गुणस्थान को दो गाथाओं द्वारा कहते हैं। ये प्रमत्त गुणस्थान कौन सा है? छठा गुणस्थान। मुनिराज जो छठे सातवें में होते हैं, उसमें से छठे गुणस्थान की बात चलेगी। प्राप्त होते समय पहले सातवां होता है, परंतु यहाँ क्रम से वर्णन चल रहा है, इसलिए छठे का वर्णन पहले करेंगे। 32 नंबर की गाथा। संजलन नो कसायाणु उदयादो संजमो हवे जम्मा मलजन पमादो विय तम्माहुपमत्त विरदोसो संज्वलन नौकषायाणाम् उदयात् संयमो भवेत् यस्मात् मलजनन प्रमादोऽपि च तस्मात् खलु प्रमत्त विरतस। जिस कारण से संज्वलन कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी लक्षणधारी क्षय होने पर, अब ये छठा सातवां गुणस्थान है, अभी हम छठे की बात कर रहे हैं। पांचवें गुणस्थान में कितने कषाय चौकड़ी का उपशम था? दो। और कितने का उदय था? तो दो। अब ये छठे गुणस्थान में कितने कषाय चौकड़ी का उपशम है? तीन का है। और उदय है कौन से एक का? संज्वलन। तो संज्वलन प्रकृति जो है वो कैसी प्रकृति है? देशघाती है। प्रकृति देशघाती है और उसमें स्पर्धक सर्वघाती भी है, देशघाती भी है। आपके कौन से का उदय चल रहा है संज्वलन के? सर्वघाती का। सर्वघाती का उदय चल रहा है। अभी जो मुनिराज है छठे गुणस्थानवर्ती, उनके संज्वलन के देशघाती का उदय चलेगा, तो सर्वघाती का क्या होगा? वो अप्रशस्त उपशम होगा, सदवस्था रूप उपशम होगा। तो वहां कहेंगे वर्तमान में उदयाभावी क्षय, भविष्य वाले सदवस्था रूप उपशम, और उदय देशघाती स्पर्धकों का। यही बात यहां बता रहे, फिर पढ़ेंगे हम इसको। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, वो सारे उपशमित है, पड़े हैं, अभी वो संज्वलन रूप से उदय में आएंगे। अप्रशस्त उपशम, उसी को सदवस्था रूप उपशम कहते। हाँ, संज्वलन के, हाँ वही उदय ऐसा ही होगा, क्योंकि परमाणु तो अभी खिर जाएंगे, क्योंकि उदय के ऊपर एक समय में है, वो तो रहेंगे नहीं ऐसे कायम, वो तो उदय में आने से ही रहे। तो उदय तो आ रहा है, परंतु फल किस रूप से मिल रहा है? देशघाती रूप से। यहाँ उसी को उदयाभावी क्षय कहते, उदय का अभाव। कौन सा उदय का अभाव? अनुभाग, अनुभाग का उदय नहीं हो रहा है, प्रदेश तो खिर रहे हैं परंतु सर्वघाती रूप से नहीं खिर रहे हैं। तो वहां देशघाती जो स्पर्धक है उसका उदय चल रहा है। उन परमाणुओं की संख्या कितनी है उससे कुछ मतलब नहीं है। वो परमाणु तो निकल जाएंगे परंतु उदय वहां फल देशघाती का मिल रहा है। तो उसी को कहेंगे देशघाती रूप होकर उदय में आते, ऐसा कहने में भी कोई गलत नहीं है उसमें। क्या कहते हैं, जिस कारण से 83 पृष्ठ पर टीका पहली ऊपर की, संज्वलन कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाव लक्षणधारी क्षय होने पर, यानी उसका उदयाभावी क्षय, तथा 12 कषाय, ये 12 कषाय कौन से है दिव्याबेन? हाँ, अनंतानुबंधी के 4, अप्रत्याख्यानावरण 4 और प्रत्याख्यानावरण, ये 12 कषाय जो उदय को प्राप्त नहीं है उनका, और संज्वलन कषाय और नौ कषाय, इनके निषेकों की सत्ता अवस्था रूप लक्षणधारी उपशम होने पर। ये लंबा वाक्य है ना, किस किस का उपशम है जिसको हम सदवस्था रूप उपशम कहते हैं, 12 कषाय और संज्वलन के सर्वघाती स्पर्धक और नौ कषाय भी, हाँ नौ कषायों के भी सत्ता अवस्था रूप लक्षणधारी, सत्ता अवस्था ने सत्ता में पड़े रहना उदय में नहीं आना, ऐसा उपशम जिसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम, उसी का दूसरा नाम है अप्रशस्त उपशम। तथा संज्वलन कषाय नौ कषायों के देशघाती स्पर्धकों के तीव्र उदय से, अभी देशघाती को तीव्र उदय क्यों कहा, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था में हम उसको मंद उदय कहेंगे, यहाँ देशघाती स्पर्धकों का उदय है तो संयम तो बना रहेगा परंतु छठे सातवें आठवें ऐसे गुण स्थानों में हम मंद मंद की बात करेंगे, यहाँ छठे में देशघाती का उदय है उसको तीव्र कहेंगे, सातवें में देशघाती का उदय है उसी को मंद कहेंगे, इसलिए तीव्र का
स्वरूप में स्थिरता नहीं हो रही है ये भी तो
हाँ, परंतु वो संयम बना रहता है, यानी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, वितरागता इतनी बढ़ गई है, उतनी वितरागता तो कायम रहती है परंतु फिर भी यह प्रमाद अवस्था चल रही है ना, स्वरूप में गुप्त नहीं है, तो इसलिए तीव्र उदय कहा, तीव्र उदय से सकल संयम और मल को उपजाने वाला प्रमाद दोनों होते तीव्र उदय से। अब ये सकल संयम तो है और मल को उपजाने वाला कौन है यहाँ पर, प्रमाद, प्रमाद भी है और संयम भी है, दोनों है, क्योंकि नाम क्या है इसका, प्रमत्त संयत या प्रमत्त विरत। उस कारण से प्रमत्त वही विरत सो षष्ठम गुणस्थानवर्ती जीव प्रमत्त संयत कहलाता है, ये छठे गुणस्थान का नाम क्या है, प्रमत्त संयत। कुछ पूछना है बोलो। हाँ, यहाँ प्रशस्त आपका प्रश्न है, यहाँ आपने अप्रशस्त उपशम की बात की, कौन से गुणस्थान की बात चल रही है यहाँ पर, छठवें गुणस्थान की बात चल रही है, तो यहाँ पर 12 कषायों की बात क्या हो रही है, यहाँ पर 12 कषायों का उपशम है, कैसा उपशम है, सदवस्था रूप उपशम है, और उदय किसका है, संज्वलन का, संज्वलन के देशघाती का, संज्वलन के सर्वघाती का क्या हो रहा है, उसका भी अप्रशस्त उपशम है, क्योंकि अभी क्या है, ये आपका प्रश्न ऐसा हो सकता है कि जो प्रथम उपशम सम्यक तो सही तभी आया है, सातवें में से छठे में आया है, तो उसकी पोजीशन कुछ अलग होगी और वेदक सम्यक दृष्टि जी की कुछ अलग होगी, ऐसा है क्या, इसीलिए पूछा ना आपने, यहाँ प्रशस्त उपशम किस में हो सकता है, दर्शन मोहनी में कब होता है, जब हाँ वो प्रथम उपशम सम्यक तो जब पहले से सातवें में आएगा तब,
और फिर
और वही जीव छठे में आए, परंतु प्रथम उपशम किसका हुआ है, दर्शन मोहनी का, उस समय 12 कषायों का अप्रशस्त उपशम है, और संज्वलन के सर्वघाती का भी प्रशस्त अप्रशस्त उपशम है, यानी सदवस्था रूप उपशम है। तो उनमें तो अभी इस पोजीशन में उसका प्रशस्त उपशम नहीं होता, चारित्र मोहनीय का प्रशस्त उपशम उपशम श्रेणी में होता है, यहाँ नहीं होता। आपको आप, यही प्रश्न था ना?
ना ना, उनका ये प्रश्न प्रशस्त उपशम कौन सा होगा?
यहाँ प्रशस्त उपशम है ही
पहले से सातवें में जाएगा। सुनो सुनो,
अभी सुनो। हाँ,
पहले गुणस्थान से सातवें में जाने वाला जीव छठे में आएगा तो उसके दर्शन मोहनी कर्म के प्रशस्त उपशम रहेगा ना?
हाँ, दर्शन मोहनी का प्रशस्त उपशम होगा, परंतु हमें दर्शन मोहनी की यहाँ बात ही नहीं उठाई है।
नहीं, वो बात बराबर है। तो उन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि प्रशस्त उपशम किसका होगा, तो केवल औपशमिक सम्यक दृष्टि का ही होगा,
प्रथम उपशम वाले के, वो भी दर्शन मोहनी में। द्वितीय उपशम वाले का भी वो तो श्रेणी ही चढ़ता है ना?
नहीं, वो आवे ना नीचे।
उसमें देखो, द्वितीय उपशम में भी दर्शन मोहनी का वो प्रशस्त उपशम है, उसके बाद चारित्र मोहनी का भी प्रशस्त उपशम हो जाएगा, परंतु छठे सातवें गुणस्थान में चारित्र मोहनी का वो प्रशस्त उपशम है। चारित्र मोहनी में प्रशस्त उपशम कब होगा? उपशम श्रेणी में, उपशम श्रेणी में, उपशम श्रेणी में। अरे क्षप क्षय में उपशम करेगा तो क्या होगा? हाँ, क्षय हो जाता है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, पूछना पूछना, सबका क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, पहले अंतर करेगा और जो द्वितीय स्थिति में है उसका उपशम करेगा, तो ताकि उदय में नहीं आ सकते, अंतर के काल में वहां ग्यारहवां गुणस्थान प्राप्त होगा। बढ़े आगे, यहाँ पर छठे गुणस्थान में दर्शन मोहनी की अवस्था प्रशस्त उपशम हो या अप्रशस्त उपशम हो, यानी क्षय उपशम हो, उससे यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तो हम 12 कषाय और संज्वलन के सर्वघाती का सदवस्था रूप उपशम चल रहा है, 9-9 कषायों के भी। हाँ, उसके भी जो सर्वघाती का है वो तो सदवस्था रूप उपशम चल रहा है, और उदय किसका चल रहा है? देशघाती का। जैसे हमने देखा हास्य आदि जो कषाय है, जितना पहले गुणस्थान वर्ती को हास्य कषाय है, क्या ऐसा ही हास्य कषाय चौथे पांचवे को और ऐसा ही छठे वाले को होगा? है ना? तो नहीं के बराबर होगा, इसलिए उसका ऐसा सर्वघाती का सदवस्था रूप उपशम कह दिया। ये प्रमाद जो है वो प्रमाद के कारण वहां मल है, इसलिए उसको प्रमत्त दशा कही, प्रमादी दशा कही। ये प्रमाद वाले अंतिम गुणस्थान है, प्रमाद तो पहले गुणस्थान से पाया जाता है, और कहां तक है? छठवें तक है, उसके आगे अप्रमत्त दशा होगी, प्रमादी दशा नहीं होगी। अब आगे बताते हैं, यहाँ जो कोई उन्होंने संस्कृत लिखा है, नहीं ये प्राकृत है, विवक्षिदस्य संयमस्य खो समयत्त पडुपायणम् इत्त फलत्तादो कथम संजलन नोकसायाणम् चरित्त विरोहिणम् चारित्त कारयत्तम्। एक एक का अर्थ नीचे देखते हैं। इसका अर्थ विवक्षित जो संयम, उसके क्षायोपशमिक पने के उत्पादन मात्र फलपना है। संज्वलन और नौकषाय के नौकषाय जो चारित्र के विरोधी, उनके चारित्र का करना उपजाना कैसे संभव है? चरित्र विरोहिनम चारित्र कारयत्तम कथम, क्या कहना चाहते हैं? ये जो विवक्षित संयम है, अभी उसके कैसा है? वो क्षयोपशमिक है। यहाँ जो संयम है उसको क्या कहा? क्षयोपशमिक है। तो संज्वलन और नौकषाय ये चारित्र के विरोधी है, तो ऐसा होने पर भी चारित्र का उपजाना उसके लिए कैसे संभव है? चारित्र है ना, संयम है ना, चारित्र का, तो ये चारित्र मुनिपने का जो चारित्र है वो संज्वलन के होते हुए कैसे हुआ, ये प्रश्न है। ऊपर पढ़ेंगे फिर नीचे उसका अर्थ देखेंगे। देश देश घातित तेन सपरिवख गुणम विनिमूलन सत्ति विरहियाणम उदयो विज्यमानो विनस कज्जकार ओत्ति संजम हेतुतेन विविखियत्तादो। कहते देशघाती तेने एक देशघाती है, ये जो उदय है वो कैसा है, देशघाती है ने, एक देशघाती है। उस भाव से अपना प्रतिपक्षी संयम गुण, अपना अपना प्रतिपक्षी कौन है, संयम गुण है, उसका निर्मूल नाश करने की शक्ति रहित है। विनिमूलन सत्य विरहियाणम, इसका उदय है देशघाती का तो उसका निर्मूल नाश नहीं करता है। हमने देखा था सर्वघाती का उदय हो तो निर्मूल नाश होता है प्रतिपक्षी का, अब यहां देशघाती का उदय है तो पूरा नाश नहीं कर सकता। सो इनका उदय विद्यमान भी है, उदयो विद्यमानो भी, तथापि अपना कार्य का कार्य करने वाला नहीं है। न स कज्जकार होती, अपना कार्य क्या, चारित्र का यानी संयम का घात करना, ये कर नहीं सकता क्योंकि ये देशघाती है, संयम का नाश नहीं करता। इस तरह संयम के कारण पने से, विवक्षा से, संज्वलन और नौ कषायों के चारित्र उपजाना उपचार से जानना। उसने चारित्र उपजाया नहीं है परंतु देशघाती है इसलिए उसने चारित्र का घात नहीं किया है। वत्थु दोदु कज्जम पड़ुपायेदी मलजनन पमादो विय अव्य इति अवधारणे मलजनन पमादो छेव जम्मा एवं तम्माहु पमत्ता विरदो सो तमुव लखदी। वस्तु से यथार्थ निश्चय विचार करने पर ये संज्वलन और नौ कषाय अपने कार्य ही को उपजाते हैं। क्या कार्य उपजा रहे हुए, इन्हीं से मल को उपजाने वाला प्रमाद होता है। पहले भी हमने देखा था सम्यक प्रकृति का उदय है, सम्यक तो बना रहता है, क्यों, वो देशघाती है तो सम्यक तो उपजाना उसका कार्य नहीं, उसका अपना कार्य क्या है, चलमल अगार दोष उत्पन्न करना। ऐसे यहाँ पर संज्वलन के देशघाती और नौ कषायों के देशघाती स्पर्धकों का उदय है तो संयम तो बना रहता है क्योंकि ये देशघाती है, संयम का चारित्र का पूरा घात नहीं करता, परंतु इसका अपना कार्य क्या है, प्रमाद उत्पन्न करना, प्रमाद रूपी मल को उत्पन्न करता है। अपिच शब्द है सो प्रमाद भी है, ऐसा उदाहरण अर्थ में जानना। जिस कारण मल का उपजाने वाला प्रमाद है उस कारण ऐसा प्रकट प्रमत्त विरत वह षष्ठम गुणस्थानवर्ती जीव है। यानी ये जो वहां देशघाती स्पर्धक है किसके, संज्वलन के, उसके कारण तीव्र उदय है ना उसका, तो उस कारण वहां प्रमाद नाम का वो मल उत्पन्न होता है। उसे लक्षण द्वारा कहते हैं, उसी का लक्षण अभी यहां बता देंगे। वत्ता वत्त पमादे जो वसै पमत्त संजदो होदी सयल गुणशील कलियो महवई चित्तलायरणो व्यक्ता व्यक्त प्रमादे यो वसति प्रमत्त संयतो भवति सकल गुणशील कलितो महाव्रती चित्रलाचरणः। टीका पढ़ते हैं उसी में वो एक एक शब्द का अर्थ भी दिया है। व्यक्त अर्थात अपने जानने में आवे, पुनश्च अव्यक्त अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञानियों के ही जानने योग्य। ये प्रत्यक्ष ज्ञानी कौन होते वीरेश भाई, केवल ज्ञानी, यानी अपने में हो रहे परंतु जान रहे केवल ज्ञानी, जिसको अपनी भाषा में हम अभी तक क्या कह रहे थे, अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक यानी व्यक्त जो अपने जानने में आवे, और अव्यक्त यानी अबुद्धिपूर्वक जो अपने जानने में न आवे। केवल ज्ञानी तो जानते हैं, तो व्यक्त और अव्यक्त ऐसा जो प्रमाद उनमें जो संयत प्रवर्तता है, संयत है ना मुनिराज, जो प्रमाद में वर्तते हैं, सो चारित्र मोहनी के क्षोपशम के महात्म्य से समस्त गुण और शील से संयुक्त महाव्रति होता है। यहाँ जो उसके महाव्रति कहते हैं, वहां चारित्र मोहनी में क्षयोपशम चल रहा है। क्षयोपशम की परिभाषा क्या देखी थी हमने? एक तो उदयाभाविक क्षय, उदयाभाविक क्षय किस किस का चल रहा है? 12 कषायों का, संज्वलन और 9 कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों का, और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती का उदय। देशघाती में संज्वलन और 9 कषाय लेना, पहले 3 कषाय चोकड़ी तो नहीं लेना है, उसका तो सदवस्था रूप उपशम ही लेना है। तो कहते हैं समस्त गुण और शील से संयुक्त महाव्रति तो है ही ये लोग, ये जीव। अपि शब्द से प्रमादी भी है, यानी महाव्रति तो है ही है, भावलिंगी संत है, फिर भी प्रमादी है। प्रमादी भी होता है और महाव्रति भी होता है, अपि का अर्थ है भी। यहाँ सकल संयमपना, महाव्रतिपना, देश संयत की अपेक्षा जानना, ऊपर के गुणस्थानों की अपेक्षा नहीं। पहले देश संयमी कहा और यहाँ सकल संयमी कह दिया। उस कारण से ही प्रमत्त संयत चित्रला चरण है ऐसा कहा है। ये चित्रला चरण क्या होता है उसको बताएंगे अभी। चित्रम अर्थात प्रमाद से मिश्र रूप को लाती अर्थात करे, उसे चित्रल कहते हैं। यानी वहां सकल संयम है और प्रमाद से मिक्स है, मिश्रित है, तो उसको चित्रल कहा। चित्रल आचरण है जिसका, वह चित्रलाचरण जानना। अथवा दूसरा अर्थ बताते, दूसरी पद्धति से इसी को बताते, इसी शब्द को। चित्रल अर्थात सारंग चीता, चित्ता जिसको हम कहते हैं, उसके समान मिला हुआ काबरा आचरण जिसका हो, वह चित्रलाचरण जानना। अथवा चित्रम लाती अर्थात मन को प्रमाद रूप से करे, वह चित्तल कहलाता है। चित्तल आचरण जिसका, वह चित्तलाचरण है। इसी के 2-3 अर्थ अलग अलग पद्धति से बताए हैं। प्रमाद को ही यहाँ चित्रलाचरण कह दिया है। इस तरह विशेष निरुक्ति भी पाठांतर की अपेक्षा जानी। पाठांतर यानी अन्य पाठ, यानी अलग अलग निरुक्ति से अलग अलग अर्थ प्रमाद के लिए कैसे हो सकते हैं, उसी को यहाँ समझाया है। अब यहाँ से बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग विषय आने वाला है। है तो प्रमत्त गुणस्थान की बात, प्रमादों के कितने भेद है, उसके वो गूढ़ यंत्र कैसे बनाने, उसका यहाँ एक बार चला था एक बार, संख्या मान वगैरह सभी विषय भी आएगा। क्योंकि टोडरमल जी ने कहा था प्रसंग वश में अन्य भी इसमें बातें कहूंगा, तो यह प्रसंग वश सभी अन्य भी बातें बताएंगे। यहाँ तो केवल प्रमादों की बात चलेगी, उपमान संख्या मान वो पर्याप्ति के प्रकरण में चलेगा। आगे उन प्रमादों के नाम संख्या दिखाने के लिए सूत्र कहते हैं। विक्रहातः कसाया इंद्रिय निद्दातः एव पणयोय चदु चदु पणमेगेगम् होंति पमादाहु कण्णरस। विकथा तथा कषाया इंद्रिय निद्रा तथैव प्रणयश्च चतुश्चतुः पञ्चैकैकम् भवन्ति प्रमादा खलु पञ्चदश। ऊपर की लाइन में प्रमादों के नाम लिखे हैं और नीचे उन्हीं की संख्या लिखी है। ऊपर लिखा है विकथा और नीचे लिखा है चतु, यानी चार, चार विकथाएं होती है। तथा कषाया और नीचे उसके लिए भी चतु कह दिया। इंद्रिय और नीचे लिखे पंच, फिर निद्रा और प्रणय, एक और एक, निद्रा एक और हाँ प्रणय, प्रणय कहो या स्नेह कहो, कितने हुए? 4, 4, 8 और 5, 13 और 2, 15, ये 15 उसके भेद हुए अलग अलग।
पंचदश,
पंचदश यानी 15।
पन्नरस,
हाँ पन्नरस, ठीक है। संयम विरुद्ध कथा, उसे विकथा कहते हैं। अपने स्वरूप में लीन नहीं है, हाँ तो ये क्या हो रहा है, तो ये विकथा हो रही। क्या क्या होती है वो देखेंगे, अपने में कितनी उसके भी काउंट करना बाद में, वो 35,000-37,000 देखेंगे हम। तथा कशंति अर्थात संयम गुण का घात करता है, उसे कषाय कहते हैं। तथा संयम विरोधी, इंद्रियों का विषय प्रवृत्ति रूप व्यापार, उसे इंद्रिय कहते हैं। विकथा किसे कहा, संयम विरुद्ध कथा। कषाय, संयम गुण का घात करने वाले, उसको कषाय कह दिया। संयम विरोधी, इंद्रियों का विषय प्रवृत्ति रूप व्यापार, ये जड़ इंद्रियों को यहां इंद्रिय नहीं कहा, इंद्रियों के विषयों में जो व्यापार है उसमें अपना जो रस चल रहा है, उसमें जो उपयोग चल रहा है, उसको यहां इंद्रिय कह दिया। भाव इंद्रिय की भी बात नहीं है, उस इंद्रियों के प्रति जो लोलुपता है उसमें जो, हाँ भावेंद्रिय तो जानना है, परंतु यहां तो इंद्रिय जब कहते हैं उस विषयों में व्यापार, क्यों, क्योंकि अपने स्वरूप में गुप्त नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, देख रहा है, सुन रहा है, और कुछ स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जानना भी है, परंतु वो तो उसके छोड़कर स्वरूप में क्यों नहीं गुप्त हो रहा है, तो वहां कमजोरी है, तो इंद्रियों में व्यापार चल रहा है। अभी कितने प्रमाण में लोलुपता है वो बात नहीं है, प्रमाद यानी सभी पहले गुणस्थान से छठे तक ये सारे प्रमाद पाए जाएंगे। हाँ मुनिराज के इन प्रमादों के बहुत ही, वो उसकी जो इंटेंसिटी बहुत अल्प होगी, फिर भी है वहां पर, स्वरूप में लीन नहीं है, शुद्धोपयोग में नहीं है, तो उसको यहाँ प्रमाद कहेंगे। तथा स्त्यान वृद्धि आदि तीन प्रकृतियों के उदय से, वह निद्रा प्रचला के तीव्र उदय से प्रकट हुई, जो जीव के अपने दृश्य पदार्थों के सामान्य मात्र ग्रहण को रोकने वाली जड़रूप अवस्था वह निद्रा है। क्या कहते हैं निद्रा का, क्या बताया, ये जो निद्रा, निद्रा संबंधी जो प्रकृति है ना दर्शनावरण की, कौन कौन सी है, हाँ स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, ये पांच है। तो पहले तीन ली उसके उदय से, या निद्रा प्रचला के तीव्र उदय से, उसका सामान्य उदय हो तो भी जैसे डीप स्लीप होती है, और निद्रा प्रचला के तीव्र उदय से क्या होता है जीव में, दृश्य पदार्थों का सामान्य मात्र ग्रहण, दृश्य ने जो देखना कार्य जो है, दर्शन का कार्य, जैसे ज्ञान के ज्ञेय कहलाते हैं वैसे दर्शन के दृश्य, दृश्य पदार्थों का सामान्य मात्र ग्रहण, उसको रोकने वाली जड़ रूप अवस्था वह निद्रा है। तथा बाह्य पदार्थों में ममत्व रूप भाव वह प्रणय अर्थात स्नेह है। यहाँ तो हम प्यार के गीत गाते हैं ना, यहाँ कहते बाह्य पदार्थों में ममत्व रूप भाव, वो स्नेह कहो, प्रणय कहो, प्रेम कहो, और वो क्या है, प्रमाद है। हाँ इस क्रम से विकथा 4, कषाय 4, इंद्रिय 5, निद्रा 1 और स्नेह 1, इस तरह सर्व मिलाकर प्रमाद 15 होते हैं। यहाँ सूत्र में पहले चकार कहा, वो ये सर्व ही प्रमाद है ऐसा साधारण भाव जानने के लिए कहा है, यानी कि प्रणयश्च विकहा तहा कसाय, और ये जो तथा शब्द लिखा था, दूसरा तथा शब्द कहा, वह परस्पर समुदाय करने के लिए कहा है, यानी विकथा उसी प्रकार कषाय और उसी प्रकार इंद्रिय वगैरह सब। प्रमाद के कितने भेद देखे अभी हमने, हाँ सरलाबेन, हाँ कौन कौन से सरलाबेन बताए, हाँ 4 विकथा, 4 कषाय, हाँ पांच इंद्रिय, हाँ निद्रा और स्नेह, इस तरह से ये 15 प्रमाद के भेद बताए। आगे इन प्रमाद के अन्य प्रकार से 5 प्रकार है, उन्हें 9 गाथाओं द्वारा कहते हैं। प्रमाद में अन्य 5 बातें बताएंगे अब यहाँ पर। संघातः पत्थारो पर्यटन नठतः समुद्दिष्टम् एदे पंच पयारा पमद समुक्कितनेनिया संख्या तथा प्रस्तार परिवर्तनम नष्टम तथा समुद्दिष्टम् एते पंच प्रकारा प्रमाद समुत्कीर्तनेनिया। प्रमाद समुत्कीर्तन ने प्रमाद का व्याख्यान, समुत्कीर्तन करना है ने व्याख्यान करना। तो ये प्रमाद का जब व्याख्यान करते हैं तो ये 5 प्रकार गेया है ने जानने लायक है, जानो कौन से, संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट। हर एक का अर्थ अभी बताने जाने वाले। देखो टीका प्रमाद के व्याख्यान में, व्याख्यान लिखा ना समुत्कीर्तन ने उसका व्याख्यान। संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट ये 5 प्रकार जानना। वहां प्रमादों के आलाप को कारणभूत, आलाप का अर्थ होता है कथन करना, भेदों का कथन करना उसको कहेंगे आलाप। प्रमादों के आलाप को कारणभूत जो अक्ष संचार के निमित्त का विशेष वह संख्या है। अपनी भाषा में प्रमादों को अगर हम नंबर देंगे, पहला दूसरा, अभी हमने 15 देखे और उसके कॉम्बिनेशंस और ज्यादा हो गए, कितने हो गए, 4 × 4 × 5 × 1 × 1 80 हो गए, 4 × 16 = 80। तो पहले नंबर का कौन सा है, दूसरे नंबर का कौन सा है, 70 नंबर का कौन सा है, 78 नंबर का कौन सा है, तो ये जो है उसको कहेंगे संख्या।
ये सब आपको याद करना नहीं है, यहाँ कैसा वो 70 नंबर यानी 70 या 27 नंबर कैसा निकालना, ये बिना याद किए 15 सेकंड में आप
बिल्कुल
ढूंढ पाओगे, 1 मिनट भी नहीं है ना। इंटरेस्टिंग
और बिल्कुल सबको आने वाला है।
हाँ।
उसके बिना हम आगे बढ़ेंगे नहीं। हाँ। देखो ये यहाँ अपना हुआ है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका 2 बार 3 बार यहाँ पढ़ चुके हैं लोग, और सबके हाथ में इन्हें तो अभी कल से रफ पेपर भी रखना, ये प्रमाद की कैलकुलेशन कैसे करना, और हर एक जन जब नहीं कर सकते तब तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सबके ख्याल में आने वाला है, क्यों, क्योंकि आप अपने ज्ञान से जानने वाले, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ हाँ आप कुछ बता रहे थे।
नहीं बता।
हाँ वॉशिंगटन में भी लिया था ये विषय। हाँ
अक्ष संचार यानी क्या वो बताना रहेगा।
आलाप को कारणभूत जो अक्ष संचार के निमित्त का विशेष, अक्ष संचार अभी कहेंगे उसको, यानी जो अलग अलग भेदों को पलटाएंगे ना, जैसे पहली विकथा ली, उसके बाद दूसरी विकथा, तीसरी विकथा, चौथी विकथा, क्रम से हम सभी अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताएंगे, उसके लिए एक के बाद दूसरा जो हम टर्न हो जाएंगे उसको कहेंगे अक्ष संचार। ये बातें थोड़ा अभी आगे पढ़ेंगे, इसको और हमारी क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि वहां यही बातें बताने वाले। पुनश्च इनको स्थापन करना वह प्रस्तार है। स्थापन ने वहां वो लिखेंगे ऐसे, ये विकथा के 4 भेद है, उसके नाम लिखेंगे, उसके ऊपर कषायों के 4 नाम लिखेंगे, उसके ऊपर इंद्रियों के नाम लिखेंगे, इस तरह से ये सब लिख देना, स्थापन करना, उसको कहेंगे यहाँ प्रस्तार। पुनश्च अक्ष संचार परिवर्तन है, अक्ष संचार ने पलटना, जैसे पहले विकथा पर है, पहला विकथा, पहला कषाय, पहला इंद्रिय, स्नेह और निद्रा, ऐसे हमने कॉम्बिनेशन लिया, अभी हमें कॉम्बिनेशन बदलना है, तो बाकी सब उतना ही रखो और हम पहले विकथा से दूसरे विकथा पर जाओ, तो हमने वो परिवर्तन किया, पलटा हमने, तो उसको अक्ष संचार कहेंगे। संख्या को धरकर अक्ष का लाना नष्ट है। हमने आपको बताया कि ये विशिष्ट संख्या है, कौन सी है, 50 नंबर की, और आपको वो पूरा ही भेद बताना है। पांच हमने देखे ना, विकथा, कषाय, इंद्रिय, स्नेह और निद्रा। तो कौन सी विकथा है, कौन सा कषाय है, कौन से इंद्रिय का लोलुपी है, ये सब हमको बताना है, ये लाना। तो उसको कहेंगे नष्ट।
नष्ट यानी खत्म होना, ऐसा मत लेना। ये नष्ट का अर्थ ही अलग है।
और अक्ष को धरकर संख्या का लाना समुद्दिष्ट है। जैसे बताया कि स्त्री कथा लापी है और माया कषाय वाला है, श्रोत्र इंद्रिय का लोलुपी है, स्नेहवान और निद्रालु है, वो कौन से नंबर का है प्रमाद। तो हमने आलाप बता दिया और आपको संख्या बताना है, तो उसको कहेंगे समुद्दिष्ट। पांच कौन से नाम देखे हमने, संख्या, प्रस्तार, अक्ष संचार,
नष्ट और समुद्दिष्ट।
नष्ट और समुद्दिष्ट, नष्ट में संख्या बताएंगे आपको उसका आलाप बताना है, और समुद्दिष्ट में आलाप बताएंगे आपको उसकी संख्या नंबर बताना है उसका कौन सा है। यहाँ भंग को कहने का विधान वह आलाप है। ये भंग ने भेद, यहाँ जो 80 भंग पड़ेंगे यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं, कॉम्बिनेशन अलग होते हैं ना। चार विकथा में किसी एक विकथा करने वाला होगा, चार कषाय में किसी एक कषाय पर होगा, पांच इंद्रियों में कोई एक इंद्रिय वाला, तो उसके कॉम्बिनेशन अलग अलग हो गए, तो उसको कहेंगे यहाँ भंग। तो ये भंग को बताना उसको कहेंगे आलाप। हमने कहा ना भेद का कथन, भंग का कथन वो है आलाप। पुनश्च भेद और भंग का नाम अक्ष जानना। पुनश्च एक भेद अनेक भंगों में क्रम से पलटता है उसका नाम अक्ष संचार जानना, यानी क्रम से उसका जो पलटना होता है उसको कहेंगे अक्ष संचार। पुनश्च जितने वा भंग हो उतने प्रमाण का नाम संख्या जानना, यानी वो कौन से नंबर पर है, वो भंग पहला है, दूसरा है, क्या दसवा है, उसको कहेंगे संख्या। संख्या ने उसका
नंबर
क्रमांक,
25वां, 50वां।
देखो इसी को अभी विशेषार्थ में समझाया है, ये मूल पुस्तक में नहीं है, ये हमें आप समझने के लिए। ऊपर हमने प्रमाद के 15 भेद देखे, उसमें मुख्य पांच प्रकार है। कौन कौन से? विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और स्नेह। इनमें से विकथा, कषाय, इंद्रिय के क्रम से चार, चार और पांच भेद हैं। ये सब एक जीव के एक साथ तो होते नहीं है। चार में से एक विकथा, चार में से एक कषाय, पांच में से एक इंद्रिय लोलुपता। इंद्रिय पांच है एट ए टाइम, इंद्रिय लोलुपता की बात है, किस विषय में हम प्रवृत्ति कर रहे हैं। एक निद्रा और एक स्नेह, इस तरह एक साथ पांच प्रमाद होते हैं। विकथा में एक विकथा है चार, परंतु एट ए टाइम किसी जीव के एक विकथा भी चल रही है, कषाय भी चल रहा है, इंद्रिय की लोलुपता भी है, स्नेह भी है और निद्रा भी है, वो पांचों एट ए टाइम होती है। परंतु पांचों तो लिए हमने, परंतु चार विकथा एट ए टाइम नहीं होगी, चार कषाय एट ए टाइम नहीं होगे। तो ये जो पांच प्रमाद होते हैं, परंतु इनके भेदों को पलटाने से, अभी विकथा में चार भेद है, कषाय में चार भेद है, इंद्रियों में पांच भेद है, इनके भेदों को पलटाना जिसको अक्ष संचार कहेंगे, उसके कारण अनेक भंग हो गए जिसको हम कॉम्बिनेशंस कहेंगे। कॉम्बिनेशन परमिटेशंस कहते ना, ये यही प्रकार है। तो इनके भेदों को पलटाने से अलग अलग संयोगों द्वारा अलग अलग भंग होते हैं, यानी उसके भेद प्रमाद के अलग अलग हो गए, जो सब मिलकर चार गुना चार गुना पांच गुना एक गुना एक 80 होते हैं। इन भंगों को क्रमवार पहला, दूसरा, तीसरा आदि कहना उसे संख्या कहते हैं। ये बात इतनी क्लियर हुई? आगे बढ़े कि नहीं? हाँ, अभी सबको पूछेंगे हम। क्यों बेन? चलो आगे। आगे विशेष संख्या की उत्पत्ति का अनुक्रम कहते हैं। सव्वे पिपूव भंगा वरिम भंगेशु एकमेकेशु मेलंतित्यकमसो गुणिदे उपजदे संखा सर्वेपि पूर्वभंगा उपरिम भंगेशु एकैकेशु मिलंतीति चक्रमशो गुणिते उत्पद्यते संख्या। टीका। सर्व ही पूर्व भंग ऊपर ऊपर के भंगों में एक एक में मिलते हैं होते हैं, इसलिए क्रम से परस्पर गुणा करने से विशेष संख्या उपजती है, जो हमने ऑलरेडी करके देखा, चार गुना पांच किया था हमने, वही कहते हैं। पूर्व भंग विकथा प्रमाद चार, विकथा जो प्रमाद है वो चार है, वे ऊपर के कषाय प्रमादों में एक एक में होते हैं। एक एक में होते का क्या होता है, जो चार विकथा है और ऊपर प्रमाद कषाय जो है कौन सा, क्रोध में चारों विकथा हो सकती है, मान में चारों विकथा हो सकती है, माया में चारों हो सकती है और लोभ में भी चारों हो सकती है। तो चार और ये चार, एक एक में चार चार, चार चौक सोलह हो जाएगी। इस तरह चार विकथाओं से गुणा करने पर चार कषायों के सोलह प्रमाद होते हैं। कषाय पहले विकथा को लिया, फिर ऊपर कषाय को रखा, हर एक कषाय में चार चार विकथा, तो सोलह हो जाएगी। पुनः ये नीचे के भंग सोलह हुए, अभी विकथा और कषाय मिलकर सोलह हो गए। वे ऊपर के इंद्रिय प्रमादों में एक एक में होते हैं, अभी पांच इंद्रिय प्रमाद है, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी आदि, तो हर एक में सोलह सोलह हो जाएंगे। एक स्पर्शन इंद्रिय संबंधी क्रोध लेते हैं तो उसमें चार विकथा, स्पर्शन इंद्रिय में मान लगाएंगे तो चार विकथा, ख्याल में आती बात। तो एक एक इंद्रिय में सोलह सोलह, तो पांच इंद्रियों में अस्सी हो जाएगा। इस तरह सोलह से गुणित पांच इंद्रियों के अस्सी प्रमाद होते हैं। उसी प्रकार निद्रा में तथा स्नेह में एक एक ही भेद है, तो उसमें कोई अस्सी के अस्सी रह जाएंगे, इसलिए एक एक से गुणा करने पर भी अस्सी अस्सी ही प्रमाद होते हैं। इस तरह विशेष संख्या की उत्पत्ति कही, यानी उसके क्रमशः उसके बता दिए, एक से लेकर अस्सी तक उसके अलग अलग भंग होंगे, इसको उसकी संख्या कहेंगे। क्यों सुशील अबे, हाँ आगे। अभी ये तो संख्या हुआ, हमने पांच कौन से देखे थे, पहले संख्या प्रस्तार, उसके बाद अक्ष परिवर्तन, अक्ष परिवर्तन और फिर नष्ट और समुद्दिष्ट, उसमें से भी प्रस्तार क्या है उसको बता रहे हैं। आगे प्रस्तार का अनुक्रम दिखाते, प्रस्तारे ने उसको विस्तार करके लिख देना। हाँ। पढ़मं पमदपमानं कमेन निखीविय उवरिमानं च पिंडं पड़ेकेकं निखित्ते होदिपत्थारो प्रथमं प्रमाद प्रमाणं क्रमेण निक्षिप्य उपरिमाणं च पिंडं प्रत्येकैकं निक्षिप्ते भवति प्रस्तारः। ये प्रस्तार कैसे होता है उसको बता रहे हैं। देखो टीका देखते हैं। प्रथम विकथा स्वरूप प्रमादों के प्रमाण का, पहला विकथा पहला प्रमाद कौन सा है, विकथा रूप, कितनी है, चार है, उसका विरलन कर, विरलन करना यानी चार है, चार को अलग अलग करके एक एक में बिखेर देना, उसको कहते हैं विरलन करना। देखो पहली बार हमने पुस्तक पढ़ी ना, ये विरलन क्या होता है कुछ नहीं समझते थे। हाँ। तो विरलन करना है ना, जितनी संख्या है, चार है तो चार को एक एक में बिखेर देना, दस है तो दस का एक 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 दस बार लिखना, उसको कहते हैं विरलन करना। विरलन कर एक एक अलग बिखेर कर पश्चात क्रम से इस विरलन के एक एक भेद के प्रति, यानी एक 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 हमने चार बार लिखा एक, और हर एक के माथे पर एक एक भेद के प्रति एक एक ऊपर का प्रमाद पिंड स्थापन करना, प्रमाद पिंड है, प्रमाद पिंड है, एक को विकथा वाला पिंड है, एक कषाय वाला पिंड है, एक इंद्रिय वाला पिंड है, अनेक ग्रुप है ना, वो उनको मिलाकर प्रस्तार होता है, सो कहते हैं। यही बात अभी जो बताई है वो करके दिखाएंगे। विकथा प्रमाद का प्रमाण चार, यानी विकथाएं चार है, उसको विरलन करके क्रम से स्थापन करके, यानी एक 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 चार बार लिखा, तथा उसके ऊपर दूसरा कषाय नामक प्रमाद का पिंड, पिंड यानी समुदाय, पिंड जो समुदाय यानी ग्रुप, उसका प्रमाण चार, उसे विरलन रूप स्थापे हुए जे नीचे के प्रमाद, उनके एक एक भेद प्रति देना। पहले विकथा हमने एक 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 चार लिखे, अभी कषाय है चार, वो हर एक एक के माथे पर चार 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 लिखना है। भावार्थ इसी का बता रहे हैं, एक एक विकथा के भेद ऊपर चार चार कषाय स्थापन करना। देखो ये नीचे वी लिखा है नीचे की लाइन में, उसके आगे एक 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 चार बार लिखा है, ऊपर में क यानी कषाय लिखा है और उसके एक एक चार है, तो वो वी के एक एक के ऊपर चार 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 लिखा है। सो इनको मिलाकर जोड़ने से 16 प्रमाद होते हैं, चार प्लस चार प्लस चार प्लस चार 16 हो जाएंगे। पुनश्च ऊपर की अपेक्षा से इसे पहला प्रमाद पिंड कहेंगे, अभी ये 16 हुए ना, तो इसको भी पहला प्रमाद पिंड कहेंगे ऊपर की अपेक्षा, इसके ऊपर और इंद्रिय भी है। सो इसका विरलन कर क्रम से स्थापित करके इसके ऊपर का, उस पहले की अपेक्षा इसका दूसरा इंद्रिय प्रमाद, अभी कषाय को पहला कहेंगे तो इसको दूसरा कहेंगे, उसका पिंड प्रमाण पांच, क्योंकि ग्रुप है, पांच का ग्रुप है, उसे पूर्ववत विरलन करके स्थापित जो नीचे के प्रमाद, अभी कितना विरलन करने पड़े, चार 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 16 हो गए ना, तो उसके ऊपर हरेक के ऊपर एक एक भेद के प्रति एक एक पिंड रूप स्थापित करने पर, देखो अभी इसको फिर लिखा है, नीचे लिखा है अभी संख्या लिखने के बदले, हाँ तो विकथाओं के नाम लिए, जैसे स्त्री कथा भ यानी क्या, हाँ भक्त ने भोजन, भक्त ने वो शिष्य नहीं, हाँ हाँ भक्तगण नहीं लेना, भोजन कथा, हाँ राष्ट्र कथा, और अने अवनीपाल यानी राजा, अवनीपाल कथा यानी राज कथा, राजा की कथा, राय ने राष्ट्र कथा, तो हरेक के ऊपर क्रोध मान माया लोभ लिए, और उसके हमने जैसे पहले देखे थे ना, एक एक विकथा के प्रति चार चार कषाय, तो जैसे पहले नीचे एक एक लिखा, हरेक के ऊपर चार चार लिखे, वैसे उसको भी हमने विरलन कर दिया तो 16 बार हो जाएंगे। ये बात ख्याल में आती है, विकथा और कषाय मिलकर 16 हुए थे, तो 16 को विरलन करना, एक 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 16 बार लिखना, जैसे यहाँ भी आए, और हरेक एक के ऊपर पांच पांच लिख देना, तो पांच कितनी बार लिखा है, 16 बार है ना, तो 16 बार पांच को हम ऐड कर देंगे, 80 हो जाएंगे। भावार हा? पांच इंद्रिय वाला वो ग्रुप है, पिंड कहते समुदाय, हाँ देखो एक एक है ना, तो एक विकथा में चार कषाय, वो एक 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 चार बार हुआ, जैसे हमने केवल विकथा और कषाय लिए थे, लेफ्ट साइड में देखना नीचे का भावार्थ, पेज नंबर 86 पर भावार्थ में जो लिखा था, वहां विकथा के एक एक लिखे और कषाय के चार चार लिखे, तो एक यानी पहले विकथा का विरलन किया और हरेक के ऊपर चार चार लिखे, अब विकथा और कषाय मिलकर 16 हो जाते हैं, तो 16 को एक 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 ऐसा लिख दो 16 बार, और हरेक के ऊपर पांच पांच लिखो जो इंद्रिया है। ये ख्याल में आई बात सुभाषचंद जी, नहीं ख्याल में आई, हाँ हाँ देखो क्या कहना है, विकथा कितनी है, चार है, एक एक विकथा में कषाय कितने हो सकते हैं, चार, तो नीचे हमने एक एक लिखा और हर एक के माथे पे चार चार लिखा, तो टोटल कितनी हुई, 16 हुई। अब विकथा और कषाय मिलकर 16 है, तो 16 बार एक एक लिखो और हाँ हर एक एक के ऊपर 5-5 लिखो, तो 16 बार 5 आया, 80 हो गए। यही लिखा है, वो राइट साइड में जो लिखा है ना आपके वहां, उसके नीचे भावार्थ इसका दोबारा समझा रहे हैं। समय कल, अच्छा समय हो गया, कल समझाएंगे इसका भावार्थ, कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होड़ो। सुशील है।